भाई लक्ष्मी निवास जी झुंझुनवाला, समागत देवियों और सज्जनों, विगत कुछ वर्षों से विवेकानंद केंद्र तथा भीलवाड़ा संस्कृति प्रकाशन इन दोनों के सम्मिलित तत्वावधान में मेरे प्रवचन के जो कार्यक्रम रखे जाते रहे हैं, उसी परंपरा में इस वर्ष का भी यह कार्यक्रम आयोजित है। मैं इन दोनों संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया और मुझसे आग्रह किया कि गीता को केंद्र बना करके कुछ चिंतन आपके समक्ष किया जाए। विगत वर्षों में गीता ही प्रधान पृष्ठभूमि रही। जब हमने उसके अलग अलग पहलुओं पर विचार किया था, भाई लक्ष्मी निवास जी की गीता में विशेष रुचि का ही परिणाम है कि वे बारंबार आग्रह करते रहते हैं कि गीता पर अधिक से अधिक चिंतन किया जाए। इसलिए जो विषय इन तीन दिनों के लिए घोषित हुआ है और आप उस विषय से परिचित हैं ही, उस पर हम लोग विचार करेंगे। विषय जो दिया गया है वह है श्रीमद् भगवद् गीता, भक्ति कर्म ज्ञान एवं ध्यान योग का संगम। वस्तुतः गीता में समस्त साधना पथों का संगम देखा जाता है। भगवान कृष्ण एकांगी नहीं थे, उन्होंने मानव मन में चलने वाली सभी प्रवृत्तियों को देखा था, जाना था, और इसलिए गीता के माध्यम से ऐसा रास्ता वे सुझाते हैं जो सभी मानव प्रवृत्तियों के लिए अनुकूल बन सके। यह कठिन कार्य है, परंतु फिर भी कार्य तो करना ही है, कितना भी कठिन क्यों न दिखाई देता हो। मंजिल कितनी भी दूर हो, मनुष्य को तो चलना ही है, क्योंकि मंजिल को वह पाना चाहता है। इस दृष्टि से गीता में ये जो मार्ग सुझाए गए हैं वे हमारे लिए पथ प्रदर्शक बनते हैं और हमें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। गीता जो ग्रंथ है उसको मैं इतिहास का ग्रंथ नहीं कहता। वैसे महाभारत इतिहास है और महाभारत के भीतर में यह गीता प्राप्त होती है। उस दृष्टि से आप गीता को इतिहास कह सकते हैं, पर मैं यह कहूंगा कि मैं गीता को उस प्रकार से इतिहास नहीं मानता जिस अर्थ में हम इतिहास को समझते हैं। इतिहास शब्द का मतलब होता है इति ह आस, ऐसा वह था। इसका तात्पर्य यह है कि इतिहास हमें पीछे की ओर ले जाता है। पीछे जो घटनाएं घट गई हैं उन घटनाओं का विवरण हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। इतिहास का यही प्रयोजन है। महाभारत ग्रंथ में हमें इतिहास तो मिलता है, पर इतिहास के साथ साथ उसमें एक विधा और जुड़ी हुई है, और वही विधा हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। कई लोग कहा करते हैं कि भारत में इतिहास विकसित नहीं हुआ। जिस ढंग से इतिहास लेखन होना चाहिए वैसा इतिहास लेखन प्राचीन भारत में नहीं हुआ। यह सही है, कई अंशों में यह बात पूरी तरह से ठीक है। जो पाश्चात्य प्रणाली इतिहास लेखन की रही है वह हमारी अपनी प्रणाली नहीं रही है। हमने मात्र राजाओं का इतिहास नहीं लिखा है कि कौन राजा किस ईसवी सन में या किस विक्रम संवत में पैदा हुआ, उसने क्या क्या कब कब किया, ऐसा इतिहास प्राचीन भारत का नहीं मिलता है। और इसीलिए हमें यह पता नहीं चलता है कि श्री राम कब हुए थे, श्री कृष्ण कब हुए थे, और उनके होने की तारीखों में विवाद हो सकता है। हमने इतिहास की उस विधा का पालन नहीं किया जो विधा पश्चिमी प्रणाली हमारे समक्ष रखती है। इसका शायद एक कारण यह हो सकता है कि हमने इतिहास की घटनाओं को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना है। महत्वपूर्ण यह माना है कि इतिहास की घटनाओं से सबक हमें क्या मिलता है, और उस सबक को इतिहास के माध्यम से हमने लोगों के समक्ष रखना चाहा है। महाभारत में भी हम इसी परंपरा को कार्यरत देखते हैं। वहां पर इतिहास के नाम से वंशावली तो मिलेगी, परंतु उस ढंग से इतिहास हमें नहीं मिलता जिस ढंग से आज हम इतिहास की बात को देखते हैं। पर उन घटनाओं वाली के माध्यम से हमारे समक्ष कोई शिक्षा रखी गई है, कोई सीख रखी गई है। यह जो गीता की रचना है वहां पर इतिहास का अंश केवल इतना है कि महाभारत का युद्ध शुरू होना है, दोनों तरफ सेनाएं सज करके खड़ी हैं, केवल बस एक संकेत देना है कि युद्ध शुरू हो जाएगा। अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है, जरा मैं यह तो देखूं कि कौन कौन राजा दुर्बुद्धि दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने के लिए आए हैं। और वह श्री कृष्ण से कहता है कि हे अच्युत, जरा रथ को बीच में ले चलें ताकि मैं सेना को तो देख लूं। यह जो दुर्बुद्धि दुर्योधन है उसकी ओर से कौन कौन लड़ने के लिए आए हैं मैं एक बार देखना चाहता हूं। और उसके बाद जब देखता है अर्जुन अपने सगी संबंधियों को देखता है, आत्मीय स्वजनों को देखता है, शत्रु को नहीं देखता, और वह शोक को प्राप्त होता है, कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसके बाद भगवान कृष्ण समझाते हैं और अंत में अर्जुन को युद्ध करने के लिए राजी कर लेते हैं। इतना इतिहास है। अब इस इतिहास के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिल सकती है, उस शिक्षा को गीता के माध्यम से परिवेशित किया गया है। यह हमारी प्रणाली रही है। भारत में जितने भी ऐसे ग्रंथ हुए, चाहे वह वाल्मीकि की रामायण हो, अन्य ग्रंथ हो, उनके माध्यम से इसी शिक्षा को देने का प्रयास किया गया है कि हम उन घटनाओं से क्या सीख ग्रहण कर सकते हैं। तो यहां पर जो गीता का इतिहास अत्यंत संक्षेप में आपके सामने मैंने रखा, वह तो छोटी सी घटना हुई, पर उस घटना के माध्यम से कितना बड़ा पाठ हमें पढ़ा दिया गया, और उसी को केंद्र बना करके व्यासदेव बहुत ही सुंदर संरचना करते हैं। साधना की दृष्टि से, मनुष्य के जीवन के प्रयोजन की दृष्टि से, आखिर जब मैं जन्म लेता हूं तो मेरे मन में कभी न कभी यह बात तो जरूर आती है कि मेरे जन्म लेने का मतलब क्या है। कुछ वर्ष इस संसार में मैं रहूंगा, उसके बाद यहां से विदा लेकर के चला जाऊंगा, तो वस्तुतः ये जो कुछ वर्षों का इतिहास दिखाई देता है मेरा अपना, उसका तात्पर्य मेरे अपने लिए क्या है? आखिर मनुष्य किस लिए आता है? क्या जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है? एक प्रश्न मन में ऐसा उठता है। यदि हम यह सोच लें कि जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है और हम केवल बस यूं ही आते हैं, आ गए हैं इस संसार में, ठीक है, एक प्रकार की घटना घटी, हमने जन्म लिया, इस संसार में कुछ वर्ष रहते हैं, एक यह आकस्मिक योजना बन गई और इस आकस्मिकता से गुजर करके एक दिन हम भी गुजर जाते हैं, जीवन में कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता, एक यह दृष्टिकोण बन सकता है। और ऐसे दृष्टिकोण वाले भी भारत में रहे, उनको भी हमने एक नाम दिया, वे लोग लोकायत कहलाते थे, और जिसे हम चलित भाषा कहते हैं, बोलने की भाषा कहते हैं, उसमें उनको चारवाक कहा गया। चारुवाक, चारु माने अच्छा लगने वाला, जो सुनने में अच्छा लगता हो, वाक तो जो सुनने में अच्छा लगता हो वह चारवाक, ऐसी वाणी वे बोलते थे जो सुनने में अच्छी लगती थी, उनको चारवाक कहा गया। उन्होंने भी जीवन में कोई प्रयोजन नहीं देखा, वे तो कहते थे कि ठीक है आए हो, जो सुख तुम ले सको ले लो इस जीवन से, किसी से छीन करके भी तुम्हें सुख मिलता हो तो छीनने में कोई आपत्ति मत करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यह बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जो आप में से बहुतों ने सुना होगा, जब तक जिंदा रहो सुख पूर्वक जिंदा रहो। सुख पूर्वक जिंदा रहने के लिए अगर उधारी घी लेने की आवश्यकता हो तो वह ले लो, खा लो, वापस करने की चिंता मत करो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, एक बार जब यह शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, चिता में जलकर राख हो जाएगा, तब फिर उसके बाद उधारी की क्या चिंता करना। अब यह भी कोई दर्शन हो सकता है, एक सामान्य बुद्धि से भी देखें तो यह कोई दर्शन तो नहीं बन सकता कि हम उधारी लेते जाएं। प्रश्न उठता है कि उधारी देने वाला क्या इतना मूर्ख है कि पहले की उधारी हम चुकता न करें तो भी उधारी दे दे। संसार में ऐसे मूर्ख तो नहीं है, और वे जब हमें परेशान करेंगे तो उधारी लेकर के घी खा करके हम जो सुखपूर्वक जीवन बिताने की कल्पना करते हैं, वह हमारी कल्पना कहां तक खड़ी रह सकती है? तो इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो मतलब यह है कि ऐसे भी लोग यहां पर थे जिनको यदृच्छावादी कहा जाता था, आकस्मिकतावादी, ये दुर्घटनावादी, एक्सीडेंटलिस्ट, जो कुछ हो रहा है संसार में सब एक्सीडेंट के फलस्वरूप हो रहा है, यहां पर कोई नियम नहीं है, इन समस्त घटनाओं के पीछे कोई आकस्मिकता है, कोई योजना नहीं है, ऐसे भी मानने वाले लोग यहां पर रहे। हम तो देखते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद में एक ब्रह्म गोष्ठी का आयोजन होता है। उस समय ब्रह्म गोष्ठियां हुआ करती थी। आजकल जैसे साहित्य गोष्ठी होती है, विज्ञान गोष्ठी होती है, कला गोष्ठी होती है, वैसे ही ब्रह्म गोष्ठी होती थी प्राचीन काल में। और ब्रह्म गोष्ठी में जीवन के संबंध में विचार किया जाता था। यह जीवन क्या है? अच्छा, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं वह ब्रह्म क्या है? यह विश्व निकला है तो क्या ब्रह्म से निकला है? तो ब्रह्म और विश्व में संबंध क्या है? ऐसा चिंतन जहां चलता था जिस गोष्ठी के भीतर, उसे ब्रह्म गोष्ठी के नाम से पुकारते थे। श्वेताश्वतर नाम के एक ऋषि थे। अब यह उनका सही नाम है या नकली नाम है यह समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऋषियों ने अपना नाम कभी प्रकाशित नहीं किया। जितने उपनिषद दिखाई देते हैं उनके पीछे ऋषि का नाम दिखता नहीं है। केन उपनिषद है, केन शब्द से प्रारंभ हुआ इसलिए उसका नाम केनो उपनिषद हो गया। कठ उपनिषद है, मांडुक के उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, तो यहां पर किसी ऋषि को हम देखते नहीं है कि कौन ऋषि है जो इस उपनिषद के प्रणेता हैं। उन्होंने अपने को इतना छिपा करके रखा। इसके पीछे का तात्पर्य यह होगा कि जब हम आत्मा का संदेश दे रहे हैं और यह मानते हैं कि देह नाशवान है, तो इस नाशवान देह का नाम रखना फिर क्यों? यह क्यों अमर रहे? जब देह नष्ट हो जा रही है तो देह के साथ जो नाम है वही फिर क्यों अमर रहे? आत्मा ही अमर रहे। और इस दृष्टि से उन्होंने कहीं पर अपना नाम नहीं दिया। तो श्वेताश्वत जो थे, या तो उनका असली नाम, मुझे लगता है असली नाम तो नहीं होगा, श्वेताश्वतर उपनिषद नाम है उपनिषद का, तो मान ले कि उनका नाम श्वेताश्वतर ऋषि है। अब वे आयोजक हैं ब्रह्म गोष्ठी के। उन्होंने समागत जितने भी विद्वान थे उन सब का स्वागत किया और कहा कि आज कुछ प्रश्नों की चर्चा के लिए आप सबको आमंत्रित किया गया है। आप लोग अपने अपने विचार से इन प्रश्नों का उत्तर सामने रखें। प्रश्न क्या थे? किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता, जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा, अधिष्ठिता केन सुखे तरेशु, वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्था। ये प्रश्न है। श्वेताश्वतर ऋषि इन प्रश्नों को रखते हैं, किम कारणम ब्रह्म, और यही पहला मंत्र है, पहला श्लोक है उस श्वेताश्वतर उपनिषद का। प्रथम श्लोक ही यह शुरू होता है प्रश्नों से कि किम कारणम ब्रह्म, ब्रह्म क्या वही कारण है संसार का? अच्छा, ब्रह्म यदि कारण है तो ब्रह्म क्या है? किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता, हम लोग कहां से पैदा हुए हैं? जीवाम केन, हम किसके द्वारा जीवित हैं? क्वचसम प्रतिष्ठा, हमारी बुनियाद कहां पर है? और फिर उसके बाद कहते हैं जीवाम केन क्वचसम प्रतिष्ठा, अधिष्ठिता केन सुखे तरेशु, वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्था। यह जो जीवन की नदी बह रही है, सुख और दुख ऐसे दो किनारों को छूती हुई, तो इस जीवन की नदी के बहने का प्रयोजन क्या है? हे ब्रह्मविद लोगों, आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आमंत्रित किया गया है। और फिर वहां पर प्रत्येक ने अपनी अपनी दृष्टि से इन प्रश्नों का उत्तर दिया। जो दूसरा मंत्र है श्वेताश्वतर उपनिषद का, उसमें यह कहा, काल स्वभावो नियतिर यदृच्छा, भूतानि योनि पुरुष इति चिंत्या, संयोगमेषां नतु आत्मभावात्, जीवाप्यनिशः सुख दुख हेतु। एक ऋषि खड़े होते हैं, कहते हैं मैं इस विश्व का कारण काल को मानता हूं, काल है, काल से यह सारा संसार निकला है। बहुत ठीक है, उन्होंने टाइम को, काल को एब्सोल्यूट माना, निरपेक्ष सत्ता के रूप में स्वीकार किया। और यह विज्ञान के क्षेत्र में भी हम देखते हैं, एक जमाना था साइंस के क्षेत्र में जिस समय देश को एब्सोल्यूट माना गया, या जो स्पेस है वह एब्सोल्यूट है। फिर उसके बाद युग आया विज्ञान के क्षेत्र में जब मान्यता बदल गई, स्पेस को एब्सोल्यूट मानने की जो परंपरा थी वह कट गई, फिर टाइम को एब्सोल्यूट माना गया या काल ही निरपेक्ष सत्ता है, और उसके बाद यह मान्यता भी खंडित हो गई। और आज विज्ञान के क्षेत्र में एब्सोल्यूट के लिए यदि कोई मान्यता है तो वह टाइम स्पेस कंटिन्यूअम की। इसमें मैं अधिक नहीं जा रहा हूं, मैं केवल यह बता रहा हूं कि मान्यता कैसे बदलती है। और विज्ञान के क्षेत्र में भी एक दिन यह मान्यता थी कि यह काल ही एब्सोल्यूट है, तो यहां पर ऋषि उठकर के खड़े होते हैं, कहते हैं मैं काल को कारण मानता हूं, यही विश्व का कारण है। एक दूसरे ऋषि उठकर के खड़े हुए, उन्होंने कहा कि यदि मुझसे पूछते हो तो मैं स्वभाव को कारण मानता हूं। स्वभाव, स्वभाव का मतलब जल नीचे की ओर क्यों बहता है? अपने स्वभाव के कारण बहता है। इस क्यों का और कोई उत्तर नहीं है। पानी बह रहा है तो वह नीचे की ओर बहेगा, क्यों बहेगा? अपने स्वभाव के कारण बहेगा। यह विश्व उत्पन्न क्यों हुआ? क्योंकि उसके स्वभाव में उत्पत्ति थी, इसलिए विश्व उत्पन्न हुआ, इसको कहते हैं स्वभाव। तो दूसरे ने कहा कि हम कहते हैं यह इनहेरेंट नेचर है, यह विश्व में समाया हुआ है उसका स्वभाव उत्पन्न होने का, तो स्वभाव को मैं कारण मानता हूं। एक ने कहा नियति, वह नियतिवादी था, कहा कि नहीं, मैं तो नियति को, डेस्टिनी को मानता हूं, और यह डेस्टिनी में है, इट इज डेस्टिन, यह नियति में है कि यह विश्व उत्पन्न हो। उसने अपने ढंग से विचार किया। चौथा जो खड़ा होता है कहता है कि नहीं, मैं तो यदृच्छा को कारण मानता हूं, यह यदृच्छावादी, एक्सीडेंटलिस्ट, आकस्मिकतावादी। उसको संसार में कोई नियम कानून नहीं दिखाई देता, वह कहता है कि एक्सीडेंट के फलस्वरूप संसार उत्पन्न हुआ। हम में भी ऐसे लोग होते हैं जहां पर हम यह मानते हैं कि हमारा जन्म भी एक्सीडेंटली हुआ। हम बड़े होते हैं तो एक्सीडेंटली बड़े होते हैं, हमारी शादी होती है तो एक्सीडेंटली होती है, बच्चे होते हैं तो वे भी एक्सीडेंटली होते हैं, और एक दिन हम मर जाते हैं। मानो जीवन में कोई नियम या प्रयोजन उन्हें दिखाई नहीं देता, तो यह भी है। परंतु यह हम पूछें, फिर और भी ऋषि थे जिन्होंने अपने अपने ढंग से उन प्रश्नों का उत्तर दिया, वहां पर अलग चर्चा। मैं केवल इतना बता रहा था कि उस उपनिषद काल में भी यदृच्छावादी थे, ऐसे लोग थे जो मानते थे कि यह संसार मानो आकस्मिक रूप से उत्पन्न हुआ है, इसके पीछे कोई कारण नहीं, इसके पीछे कोई योजना नहीं। पर आज विज्ञान के क्षेत्र में क्या हम इस बात को मान सकते हैं? क्या विज्ञान यह कहेगा कि हम एक्सीडेंटली उत्पन्न हुए हैं? एक जमाना था, उस समय विज्ञान के क्षेत्र में भले यह मान्यता रही हो कि मानव जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, पर आजकल तो विज्ञान ऐसा नहीं मानता। हम यदि जीव विज्ञान के क्षेत्र में थोड़ा सा जाकर के गोता लगा करके देखें तो आज जीव विज्ञानी इस जीवन को किसी प्रकार एक्सीडेंटल तो नहीं मानता, और यह भी नहीं कहता कि यह जो जीवन का प्रवाह है वह निष्प्रयोजन है। जैसे जूलियन हक्सले हैं, उनकी भाषा में कहें तो यह जो जीवन का प्रवाह है वह कहां जा रहा है? क्या कोई क्रम नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है? कहते हैं कि नहीं, एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? फुलफिलमेंट एंड ग्रेटर फुलफिलमेंट। यह फुलफिलमेंट, यह जो शब्द है, अब इस शब्द की आप तरह तरह से विवेचना कर सकते हैं, पर मैं यह कह रहा था कि विज्ञान के क्षेत्र में भी जीवन का प्रयोजन आज माना जा रहा है, कि मनुष्य का जीवन प्रवाह में पड़े हुए तिनके के समान नहीं, कि प्रवाह जिधर बहा करके ले जाए उधर ही वह बहता जाएगा। हम भले ही पहले विज्ञान की दृष्टि में ऐसे जीवन प्रवाह के अंदर में थे जिसका कोई लक्ष्य नहीं था, डार्विन ने इसका लक्ष्य नहीं माना, पर इवोल्यूशन आफ्टर डार्विन, 100 वर्षों में जो वहां पर जीव विज्ञान के क्षेत्र में खोजे हुई हैं, अनुसंधान हुए हैं, तो वहां पर जूलियन हक्सले जैसे जीव शास्त्री जो डार्विन के ही अनुयायी हैं, वे इस बात को मानते हैं कि जीवन का एक लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि हम निरुद्देश्य हों। वे यह मानते हैं कि अभी जो हमारा जीवन का विकास हो रहा है या प्रवाह जो बह रहा है वह केवल यांत्रिक नहीं है। डार्विन की दृष्टि में यह केवल यांत्रिक था, जिसको हम प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, जिसको हम क्रम विकास का प्रवाह कहते हैं। डार्विन की दृष्टि में वह मैकेनिकल था, वह केवल यांत्रिक था। पर आज जीव विज्ञानी जीवन के प्रवाह को मैकेनिकल नहीं मानता। वह यह कहता है कि जब तक यह विकास का प्रवाह मनुष्य में नहीं आया तब तक तो वह मैकेनिकल है। मनुष्यतर योनियों तक वह मैकेनिकल है, यांत्रिक है। पर जो ही यह विकास का प्रवाह आता है मनुष्य में, when the process of evolution comes to human form, ऐसा हम मान लें, इस मनुष्य के रूप में या मनुष्य के क्षेत्र में जब वह प्रविष्ट होता है, it no more remains mechanical, it becomes mental, या फिर यांत्रिक नहीं रहता या फिर मानसिक हो जाता है। और मानसिक होने के कारण विकास का प्रवाह मनुष्य के हाथों में आ जाता है, मनुष्य में कर्तृत्व आ जाता है कि वह अपने विकास को दिशा दे सके। यह जूलियन हक्सले कह रहे हैं, मैं अपनी बात यहां पर नहीं कह रहा हूं। तो मैं यह कह रहा हूं कि आज जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी यह मान्यता है कि मनुष्य का यह जो जीवन है वह निरर्थक नहीं है, निष्प्रयोजन नहीं है। ऐसा नहीं कि वह यांत्रिक रूप से चलता रहेगा, बल्कि इसका एक सुनिश्चित लक्ष्य है और उस लक्ष्य को उन्होंने फुलफिलमेंट एंड ग्रेटर फुलफिलमेंट कहा। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन टेंड्स टू फुलफिलमेंट एंड ग्रेटर फुलफिलमेंट, वह अधिक पूर्णता की ओर और अधिक पूर्णता की ओर जा रहा है विकास का प्रवाह। यह जो उन्होंने कहा, इसको हम अपने ढंग से समझ सकते हैं। वह अपना ढंग कौन सा है? उसको हम कहते हैं वेदांत का ढंग। स्वामी विवेकानंद ने इस ढंग को कुछ शब्दों में बहुत खूबी से व्यक्त किया है। उनसे जब पूछा गया कि आप वेदांत की दृष्टि से इस जीवन के लक्ष्य पर कुछ बातें बता सकते हैं संक्षेप में, उन्होंने उत्तर में कहा, और वह उनके बहुत प्रसिद्ध वाक्य हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल, डू दिस either by psychic control or knowledge or work or by devotion by one or more or all of these and be free। यह जो स्वामी जी कहते हैं, तो ये जो उनके शब्द हैं, ये शब्द हमें एक दिशा प्रदान करते हैं। क्या कहते हैं? Each soul is potentially divine। प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है। अब हमारे भीतर में यह ब्रह्म भाव भरा हुआ है, पूर्णता हमें छिपी है, उसको हमें काइनेटिक करना है। पोटेंशियल तो हम हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे भीतर में पूर्णता छिपी है, अभी वह व्यक्त नहीं हुई है, उसको व्यक्त करना। मेरे भीतर में दिव्यता छिपी है, उस छिपी हुई दिव्यता को व्यक्त करना, यही जीवन का लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य को हम किसी भी प्रकार पूरा करें, या तो ध्यान योग के सहारे, या कर्मयोग के सहारे, या भक्ति योग के सहारे, या ज्ञान योग के सहारे, एक के सहारे या एकाधिक के सहारे, या सबके सहारे, और वे कहते हैं एंड बी फ्री, और मुक्त हो जाओ। यही धर्म का सार सर्वस्व है। यह जो उन्होंने कहा है, तो उनका कथन ही इन तीनों दिन जो हम चिंतन करेंगे उसका आधार बन जाता है। तो यहां पर जो मैं कह रहा था, गीता का जो विषय लिया गया, भक्ति कर्म ज्ञान और ध्यान योग का संगम, यह संगम है। तो मैं यह कह रहा था कि गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण हमारे समक्ष एक संदेशा देना चाहते हैं। वह संदेशा यह है कि मानव जीवन निरर्थक नहीं, इस जीवन का एक लक्ष्य है, इसका एक प्रयोजन है, और उस प्रयोजन की प्राप्ति, यही जीवन का लक्ष्य। मैंने एक प्रयोजन वहां पर दिया गया और उस प्रयोजन को पाने का तरीका दिया गया, तभी तो कोई बात पूरी होती है। कि जैसे हमने एक लक्ष्य की चर्चा की और उस लक्ष्य को पाने का उपाय न बताएं, तब तो चर्चा अधूरी रह जाती है। तो गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष लक्ष्य भी रखते हैं और उस लक्ष्य को पाने का उपाय रखते हैं। और वह जो लक्ष्य अर्जुन के समक्ष रखा वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था। अर्जुन तो जीव का प्रतिनिधित्व करता है, हमारा वह प्रतिनिधित्व करता है। हमारी जो कमियां हैं वे अर्जुन के भीतर हैं, हम में जो दुर्बलताएं हैं वे अर्जुन के भीतर हैं। और जैसे अर्जुन मोह से ग्रस्त हुआ है, हम भी मोह से ग्रस्त होते हैं, हमें भी रास्ता दिखाई नहीं देता है। जैसे झुनझुनवाला जी ने प्रारंभिक कथन में कहा कि ये जो बातें कही जाती हैं मन के निरोध होने की या मन को अपने वश में करने की, ये बातें बहुत कठिन लगती हैं। कठिन तो है, पर यदि मनुष्य उस लक्ष्य को पाना चाहता है तब तो इन कठिन बातों को हमें करना ही पड़ता है।